का वो पढ़ लें आप, ऐसा विषय वही है सब।
हमारा जी आप तो एक बार फिर से रिपीटेशन हो जाएगा।
अच्छा
लगेगा लेकिन आप ही समझ में आ जाएंगे।
तो सबसे पहले तो एक बार अपन वो पुराना वाला पूरा टच करें कि कितना हमने उसको क्या हम पहले जो अपन ने पढ़ा है उसका एक अपने अंदर आउटलाइन तो होनी चाहिए कि किस किस टॉपिक पे हमने चर्चा की है। सबसे पहले तो जो है जैन के मायने समझा था, फिर जैन के फंडामेंटल्स समझे थे। तो फंडामेंटल्स में वस्तु स्वातंत्र या आत्म स्वातंत्र, अनेकांत और अहिंसा, ये तीन हमारे मेन वो हैं, क्या कहें, फंडामेंटल्स या प्रिंसिपल। अब फिर इसके बाद जो है वस्तु स्वातंत्र, चूंकि हमारा स्वभाव ही प्योरिटी है, तो उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए क्या कोई पाथ ऑफ लिबरेशन है? तो फिर हमने थ्री जॉयज पाथ ऑफ लिबरेशन को लेकर के पढ़े थे कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये फिर अब सम्यक दर्शन चूंकि आया है तो सम्यक दर्शन के मायने क्या है? तो सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर सात तत्व क्या है? तो फिर जीव अजीव आश्रोबन संबंध योजना और मोक्ष। और फिर एक उदाहरण भी अपन ने उसमें लिया था कि जैसे कोई रॉ मटेरियल है और अपन को एक फाइनल मटेरियल मैंने चाहिए है, तो पहले हम ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल क्या है, ओर क्या है, फिर ओर में इम्प्योरिटीज क्या है, फिर उन इम्प्योरिटीज के काज क्या है, फिर उसमें जो इम्प्योरिटीज है उनकी अपनी बाइंडिंग यूनियन है ना, वो क्या है, फिर उसको रोकने के क्या उपाय हैं, स्टॉपेज, फिर ग्रेजुअल डिके, फिर उसको कैसे हम हटाएंगे, और फिर जो प्योर अपने को चीज मिलेगी उसकी अपने उसका नेचर क्या है। तो ऐसे ही तो ये भी है, जीव फिर अजीव फिर आश्रय बंध संग निर्जरा और मोक्ष। इस तरह से जो है सात चीजें जरूरी हैं। तो जैसे सामान्य में जरूरी है वैसे ही मोक्ष मार्ग में जरूरी है। फिर एक परिभाषा और बनाई थी कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान का नाम या उनसे लगाव का नाम, ये भी सम्यक दर्शन है। तो फिर सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है, सच्चे देव कौन है? तो फिर अरहंत और सिद्ध दो आएंगे, और गुरु में जो है आचार्य उपाध्याय और साधु आ जाएंगे, और शास्त्र में हमारा जो भी स्क्रिप्ट है, जो जिनवाणी है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई, ये आ जाएगी, ऐसा करके डिटेल किया था। फिर सम्यक दर्शन में सात अंग होते हैं, आठ मदों से रहित होता है, तीन मूर्ताएं सुपरस्टिशंस उनसे रहित हैं, और आठ दोषों से शंका आदि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है वो पढ़ा था। फिर नॉलेज, तो अब नॉलेज के पिलर्स क्या हैं, मतलब वो ज्ञानाचार में कालाचार विनयाचार उभयाचार अनिन्नव आचार, अरे वाह पढ़ा था ये कि हमें ज्ञान के समय जो है व्यंजन ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए, उसका अर्थ करना चाहिए, फिर अर्थ और उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सब मिलके कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छी बात है, पर ये आज ये
हम दोनों जने एब्सेंट हों, बाकी लोग
ऐसा
नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा,
हो सकता जो भी हो, पर बहुत आसान है। जैसे आठ सम्यक दर्शन के अंग हैं, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण प्रभावना और वात्सल्य, ठीक इसी तरह से आठ अंग हैं। सबसे पहले शब्दाचार, एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन, हम कोई भी है ना, एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन। फिर उसके बाद अर्थाचार, एग्जैक्ट मीनिंग। फिर उसके बाद उभयाचार, प्रोनंसिएशन विद मीनिंग, दोनों एक साथ। फिर उसके बाद एक जो उसको क्या बोलेंगे, टाइम या वो कालाचार जिसको बोलते हैं, हाँ ऑप्टिमम है ना, ऑप्टिमम स्वाध्याय का काल क्या है, ऑप्टिमम। फिर उसके बाद स्वाध्याय किसी ग्रंथ का करेंगे तो कोई ना कोई चीज छोड़ के करेंगे, ये उपधान आचार कहलाता है ना, उपधान मुझे याद इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद था कि बहुमान, बहुमान मतलब हम विनय, टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं पर मुझे याद है कि अपन ने
ये बताया है।
तो बहुमान, और फिर अपन ने ये भी डिस्कशन किया था कि विनय और बहुमान में क्या फर्क है। बहुमान के मीन होता है कंसंट्रेशन, और विनय के मीन होता है उस समय हम डिवोट हो रहे हैं, ये तो विनय और बहुमान। और अनिन्नव, अपने गुरु का नाम और शास्त्र का नाम नहीं छिपाना। कोई व्यक्ति पूछे किस शास्त्र में से पढ़ा, तो उस शास्त्र में से पढ़ा, मेरा अपना नहीं है। किससे सीखा, तो जिससे सीखा उसका नाम बता देना, ये चीज जो है ये बता। ये आठ पिलर्स हैं, ज्ञान के मैंने शब्दाचार अर्थाचार उभयाचार कालाचार विनयाचार अनिन्नवाचार बहुमानाचार और उपधानाचार। उपधान मतलब कोई चीज छोड़ करके त्याग करना, बस इतने आठ चीज थे ज्ञान। अच्छा, ज्ञान जो है पांच प्रकार का होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से दो प्रकार का ज्ञान होता है। परोक्ष वो कहलाता है जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, प्रत्यक्ष वो कहलाता है जिसमें इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत नहीं होती। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष में जाते हैं, अवध ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष में आते हैं। प्रत्यक्ष में भी दो तरह का है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। तो पार्शियल में आता है अवधि ज्ञान और मन कर ज्ञान, और कंप्लीट जो वो है केवल ज्ञान है। इस तरह से अच्छा शुद्ध के मायने स्क्रिप्ट भी होता है और शुद्ध के मायने नॉलेज भी होता है ना। तो दोनों अर्थ लिए थे। ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो द्रव शुद्ध है, और जो हम अपने आप को जानने की हमारे अंदर जो नोइंग पावर है, नोइंग एटीट्यूड, वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। जो इंद्रिय और मन की सहायता से हम मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को और विशेष रूप से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी गिरा, तो पानी को जानना ये तो मति ज्ञान हो गया, लेकिन पानी कहाँ से आया? तो पानी लीक हुआ होगा या कमंडल से गिरा है, तो कमंडल का भी नॉलेज कर लिया कि इससे आया है। तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। पानी के माध्यम से हमने उसकी बहुत सारी
चीजों के माध्यम से आप जान लिए
हैं, ये सब शुद्ध ज्ञान। हाँ, वो लेकिन वो अनुमान ज्ञान कहना है। शुद्ध में भी फिर हमने भेद नहीं करे थे, वो अपने उत्तर डिटेल में जाने की आवश्यकता। अब इसमें जब अपन जाएंगे तो फिर डिटेल हो जाए। इस तरह से सम्यक दर्शन भी हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साइमल्टेनियस होते हैं, ये चीज अपने को ध्यान में रखने की। इसके बाद जो है चारित्र। तो चारित्र में दो तरह का, हाउस होल्डर्स के लिए अलग और मॉन्क्स के लिए अलग, एक गृहस्थ के लिए और एक साधु के लिए। अब गृहस्थ के लिए कहाँ से शुरू करा था? जैनाचार में सबसे शुरू किया था मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। ये चार चीजें गृहस्थ के भीतर पहले होनी चाहिए। फिर उसके बाद चार चीजें कौन सी?
ये चीजें होने से हमारा सम्यक दृष्टि हो जाएगा।
ये मैत्री, प्रमोद, कारुण, ये है। देखना, अपन लोग जो है देव पूजा गुरु पास्ती तो कर लेते हैं कि ये छह आवश्यक है, पर हमारे लिए प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, जहां हम गुण देखें वहां प्रमोद भाव, नहीं तो ईर्ष्या होती है गुण देख करके, सहन नहीं होता दूसरे का गुण। तो कहते पहले नंबर तो ये कि दूसरे के गुण सहन कर सकें, और दूसरे के गुण सहन क्या, उसको देख करके हर्षित हो सके, तो प्रमोद भाव। फिर उसके बाद कृपा, कोई व्यक्ति दिख जाए तो करुणा तो आनी चाहिए, और ये चार क्वालिटी वो पड़ी थी। फिर उसके बाद चार और पड़ी थी, दान, पूजा, शील और उपवास। श्रावक के चार धर्म है, दान, पूजा, शील और उपवास। और शार्ट में अगर कहना चाहें तो दान पूजा, दो से ही काम चल जाएगा। श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है दान और पूजा, उसमें सब आ गए। एक बार घटित किया था, फिर छह आवश्यक और हैं, देव पूजा, गुरुपास्ती, शास्त्राध्याय, संयम, तप और त्याग। अब देखिएगा त्याग में संयम और तप और त्याग, ये सब दान के अंतर्गत चले गए, और पूजा में देव पूजा, गुरुपास्ती, शास्त्राध्याय, ये देव गुरु शास्त्र की पूजा है, और दान में संयम कर लिया, तप कर लिया, त्याग कर लिया। तो छहों जो है दो के अंतर्गत आ जाती है, दान और पूजा। कोई शॉर्ट में पूछे कि भाई भगवान ने श्रावकों के लिए क्या कहा, तो यही कहा कि दान और पूजा। पूजा पूज्य की जाती, पूज में पंच परमिष्ठी आ जाएंगे, सब कुछ आ गया उसमें, देव पूजा, गुरुपास्ती, सात स्वाध्याय। तो इस तरह ये इनके, फिर इसके बाद अपन ने प्रतिमाएं और श्रावक के लिए प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं,
गुणस्थान की बात,
वो गुणस्थान की और मार्गना की तो लास्ट में की थी, पर श्रावक के लिए इतना। फिर साधु के लिए 28 मूल गुण में 5 महाव्रत है, और 5 समिति, 5 इंद्री विजय, नहीं 3 गुप्ति नहीं आती, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। वो आचार्य भगवंत के लिए आती है, 5 5 तो 3 चीजें, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्री निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 7 शेष गुण में नग्नता है, अयस्नान, अदंत धावन, दांत नहीं धोना, भू शयन, ठिदी भोजन, एक खड़े होकर भोजन करना और एक बार भोजन करना और केश लुंचन करना, ये 7 जो है वो 28 मूल गुण होते हैं इनके। और आपको याद हो कि जब अपन ने, ये तो 28 हो गए, जब पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा था तो उसमें सबके मूल गुण पढ़े थे कि अरहंत भगवान के 46 होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 होते हैं, आचार्य के 36 होते हैं, 25 और 28, तो वो अलग से उधर टच किया था। अब क्या बचा? गुणस्थान पर कर्म फिलॉसफी पढ़ी थी एक हफ्ते तक जो है, कर्म फिलॉसफी। कर्म फिलॉसफी का क्लू क्या है, मेन चीज क्या है बताइए? आपसे एक बार पूछा था, आपने सही बताया था, अब आप भूल गए।
नहीं, आई कैन टेल। अल्ट्रासी का ऐसा है कि जो हम आज करेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम पुराने कर्मों को आज भोग रहे हैं,
मतलब
आगे कर्म जो बंधन है वो आज के भोगने के ऊपर।
ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट में क्या कहेंगे?
जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही।
वो तो बहुत आसान सी चीज है।
नहीं, जो कुछ भी होता है कर्म की वजह से होता है,
वो भी बहुत आसान सी चीज है। ये तो कर्म क्लास के बहुत बहुत आर्डनरी चीज है। कर्म क्लास की बताइए आप,
भोगना है ये
बस हमारे क्लू है। ये क्लू है, ये हमारी कर्म फिलॉसफी का मेन पॉइंट है, हाउ टू बिहेव विथ फ्रूटेशन। हम उदय के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमारे लिए आगे कर्म बंधेंगे, वैसा हमें कर्म फल मिलेगा। कर्म उदय में आएंगे, हमारा बस नहीं है, लेकिन कर्मों के उदय के साथ हाउ टू बिहेव द फ्रूटेशन विथ फ्रूटेशन, जो उदय आया है उसके साथ हम कैसे बिहेव करेंगे हमारा, इसके लिए हमने पूरा कर्म सिद्धांत पढ़ा है। क्योंकि जो बांधे हमने वो हमको एज इट इज भोगना पड़े, ऐसी हमारी मजबूरी नहीं है।
कर्म
पर जो हम
कर्म भी हो सकते हैं ना।
हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो हमने बांधे हैं वे हमें ज्यों के त्यों भोगना पड़े ऐसी कोई जरूरी नहीं, पर इतना जरूर है जो हम भोग रहे हैं वो हमने बांधे थे। इसको थोड़ा सा समझ लो,
जैसे भोग रहे हैं वैसे बंधेंगे आगे।
हाँ, जैसे भोग रहे हैं वैसे बांधेंगे,
जैसे भोग के समय भाव आपके हो रहे हैं।
लेकिन जनरली लोग क्या कह देते हैं, जैसे बांधे थे वैसे भोगना पड़ेगा। नहीं, जैसे भोग रहे थे जो भोग रहे हैं वो बांधे थे, और जैसे भोग रहे हैं वो बंधेंगे आगे।
हाँ।
और कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते बताओ? वो मामला नहीं, वो तो कोई बता देंगे। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, रूप कर्म। ये तो ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। अपन ने क्या सोचा था कि देखो कितने प्रकार से कर्म करते हैं अपन। एक कर्म वे हैं जो हम करते हैं, है ना, एक कर्म वे हैं जो हम भोगते हैं, एक कर्म वे हैं जो कि बंध रहे हैं। इतना सीधा सीधा सा कर्म तीन ही प्रकार के तो हैं, कुछ भोगे जा रहे हैं, कुछ नए बांधे जा रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, करने को भी तो कर्म
थे। वर्तमान हो गया, क्योंकि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं और जो बांध चुके हैं और जो बंधे हुए हैं,
कैसे भी कह लो आप, पर सामान्य रूप से किसी को जिसको एबीसीडी नहीं आती जैन धर्म की, उसको क्या कहेंगे? क्या कर्म कहने से उसको लगता है कि जो हमारे बंधे हैं वे, या जो भोग रहे हैं वो ही? जो हम वर्तमान में कर रहे हैं क्या वो कर्म नहीं है क्या? जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो सबसे सशक्त है, उसी पे हमारा डिपेंड करता है भविष्य और उसी पर हमारा अतीत। इसलिए ये चीज दिमाग में आना चाहिए, कर्म मतलब जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। अब वो किसकी छाया है, वो हमारे अतीत से आगे आगे क्या होने वाला है वो हमारे वर्तमान पे डिपेंड करता है। इसलिए कुछ कर्म जो हम करते हैं, कुछ जो हम बांधते हैं, कुछ जो हम भोग रहे हैं, ये इस तरह से
प्रेजेंट कर्म द पास्ट इज द काज एंड फॉर फ्यूचर द प्रेजेंट कर्म इज द काज।
टोटली पास्ट इज नॉट ए काज, टोटली पार्शियली मे बी, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पास्ट की है।
टू सम एक्सटेंट इट इज काज एंड टू अदर एक्सटेंट इट इज एवोल्यूशन मस्ट हैव टेकन प्लेस।
इसके बिना तो एवोल्यूशन होगा नहीं, तो फिर हम तो उन्हीं कर्मों को भोगते रहेंगे, तो वर्तमान में हम कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे।
पास्ट विल कंटिन्यू।
तो इस तरह कर्म फिलॉसफी अपन ने पूरी पढ़ी थी। गुणस्थान भी 14 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये तो नाम तो किसी को याद नहीं रहे होंगे, सारांश पता है कि जब सीधा यहाँ से शुरू करें, जब किसी को सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होती तो उसका पहला गुणस्थान होता है, जब उसे श्रद्धा हो जाती तो उसे चौथा गुणस्थान कहते हैं, जब वो थोड़े बहुत व्रत ले लेता तो पांचवा हो जाता, जब वो महाव्रत ले लेता तो सातवां, छठा, सातवां, जब उसकी श्रद्धा गड़बड़ाती है तो तीसरे में गिर जाता है, जब बिल्कुल ही छूट जाती श्रद्धा तो दूसरे में, और फिर नीचे आकर के पहले में गिर जाता। हाँ, और जब वो बहुत अधिक व्रतों के साथ में और अपनी विशुद्धि बढ़ाता है तो क्रमशः फिर वो श्रेणी चढ़ता है तो आठवें, नौवें, दसवें में पहुंच जाता, वहां अपनी कषायों को पूरा नष्ट करके सीधे बारहवें गुणस्थान में पहुंचता है और कर्मों का नाश करके तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में केवली हो जाता है। और अगर दसवें गुणस्थान में उसने अगर कषायों को नष्ट नहीं किया, दबाया था तो अगर वो आठवें, नौवें में, दसवें में पहुंचता है, दबा करके पहुंचता है तो दसवें से बारहवें में ना पहुंच के ग्यारहवें में पहुंचता है, वहां पर उसकी कषायें उपशांत हैं, पर जैसे उदय में आती हैं तो फिर दस, फिर नौ, फिर आठ, फिर सात में आता, फिर दस, बारहवें में जाके फिर नहीं आता, ग्यारह तक है। अभी तो ग्यारह तक जाने की हिम्मत बनाओ, वापस आने की। वापिस आ जाते हैं तो जाएंगे ही नहीं क्या? अब तो नहीं चढ़ सकते, सात से ऊपर आपको पांच तक मिलेगा, अपने को सात तक जा सकते हैं बस। हाँ, जो लोग ग्यारहवें गुण स्थान में दो बार चले, मैक्सिमम जो है चार बार जा सकते ग्यारहवें में, उसके बाद तो मोक्ष हो ही जाए। उपशम श्रेणी चार बार चढ़, एक एक जीवन में दो बार, तो दो भाव में चार बार चढ़ेंगे उसके बाद तो मोक्ष। फिर शपक श्रेणी है क्योंकि बहुत विशुद्धि हो जाती है उसकी भी, जो उपशम करके जा रहा है वो भी विशुद्धि है, पर थोड़ी सी कमी रहती
है। गुण स्थान भी अपूर्ण करण में
बहुत विशुद्धि होती है, चाहे उपशमक हो चाहे छपक हो, दोनों चीज है। नहीं, कर्म उदय में आ जाता है, जो उसने दबाया था थोड़ी देर के लिए, हटाया नहीं था उसको, दबाया था सिर्फ। हाँ, जैसे कि पूरा कमरा था, अब उसने अपने को सामायिक के लिए बैठना था, तो जितनी जगह अपनी साफ करना बैठने लायक थी उसको तो साफ सब कर लिया बढ़िया से, उसमें बैठ गए, अब कचरा तो सब में फैला था, बस फिर से डक गया सीधा सीधा। और अगर आप पूरा कमरा बिल्कुल साफ करके फिर बैठते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कहां से आता कचरा ऐसा उसका।
टॉकिंग अबाउट केवल ज्ञान डायरेक्ट, आपने बोला प्रत्यक्ष ज्ञान, सो इन अवर मैथमेटिक्स ऑल्सो इट कम्स बिकॉज इट इज द हाइएस्ट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, वी कॉल इट एज इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स इट इज अ डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ट्रुथ, देयर इज नो मीडियम ऑफ लॉजिक। क्वाइट ऑफन
इंट्यूशन जो है वो हमारे यहाँ पर शुद्ध ज्ञान है। इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज है,
नॉलेज इट इज सुप्रीम इन आवर वर्ल्डली सेंस, व्हेन वी एक्वायर द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज द हाईएस्ट।
बट ओमनी साइंट इज
दैट इज केवल बिकॉज बाय एंड लार्ज ऑल पीपल आर ट्रैप्ड इन द लॉजिक, दे आर कंप्लीटली टेकन अवे बाय लॉजिक।
ये तो इतना तो उनको तो इतना ही कह सकते हैं कि, तो ये हो गया पूरा एक जनरल जो अपन ने रिपीटेशन हो गया। अभी मैंने पूछा नहीं कुछ भी, बस से आपको याद दिला दिया कि इतनी सारी चीजें अपन ने करी हैं। इसमें छह ढाला में भी लगभग यही चीजें हैं, पर चूंकि ये ग्रंथ है इसलिए आपको मंगलाचरण से शुरू कर दें। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सनाय।